बाबा तू कितनी अच्छी हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो, बाबा तू कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते
ओम शांति। आप सभी आज सुबह से तपस्वी मूर्त स्थिति में बैठे होंगे। अभी हम सभी के समक्ष सूरज भाई जी उपस्थित हैं। आप में से ऐसे कोई हैं जो सूरज भाई जी को पहली बार देख रहे हैं या जो नहीं पहचानते? शायद कोई नहीं होगा, तो इनका परिचय देना जरूरी नहीं है शायद। आप सभी जानते हैं सूरज भाई जी करीबन 45 इयर्स से इस यज्ञ में समर्पित हैं, और आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है योग के बारे में, आप स्वमान के अभ्यास से कई प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन देते हैं, और अपनी एक चैनल है पीस ऑफ माइंड चैनल जिसमें समाधान सीरियल आप सभी जरूर देखते ही होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति, फरमान बरदार ईमानदार, इसके ऊपर सूरज भाई जी हम सभी को और भी गहराई में लेकर जाएंगे। तो अनुरोध करते हूँ सूरज भाई जी से।
ओम शांति। गीत क्या था? बाबा तुम कितने अच्छे हो और कितने, और हमारा क्या हाल है? हम भी अच्छे हैं, हैं या नहीं? प्यारे भी हैं। भगवान बहुत प्यार करता है हमें और अच्छे से अच्छा बना रहा है। सारा संसार भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ देखता है और भी देखना चाहता है। सबने अपने जीवन में बहुत चेंजेज ला ही दी हैं और सदा चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दो चीजें हैं, चेंज को स्वीकार करना, स्वयं को चेंज करने के लिए तैयार रहना। देखो, चेंज को कैसे स्वीकार करना, मैं अपना उदाहरण दूं। हमारे यहां लकड़ियों पर भोजन बनता था, 83 तक लकड़ियां बंद कर दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। हमने ढूंढा इधर उधर तो ये सिस्टम मिला बेंगलोर में, तो हमारे लोग तैयार नहीं थे इस चेंज के लिए। कैसे होगा ये सब काम, चावल कैसे बनेंगे, इसपे कच्चे रह जाएंगे, ये वो कई बातें। लेकिन जब चेंज को स्वीकार किया तो उसमें ही आनंद हो गया। अभी भी नीचे बड़ा किचन बना, वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी। लोग परेशान थे कि ये कैसे होगा, पहले वाला ही लगा लो, क्योंकि उसके यूज टू हो गए थे ना। वो आया तो अब लगता इससे अच्छा कुछ नहीं। चेंज के लिए तैयार, इस संसार में भी चेंजेज आएंगे, सब कुछ वैसा ही नहीं चलेगा, चेंज होगा सब कुछ, और हमें भी स्वयं को चेंज करना है। ऐसा मर्यादित जीवन जिससे हमारी प्योरिटी झलकती हो, सारी मर्यादाएं प्योरिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं। बाबा ने हम सभी का जीवन पवित्र बनाया है, और ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। शायद पवित्र रहने वालों को भी इसके महत्व का ज्ञान नहीं है। हमारी पवित्रता संसार के लिए सहारा है। ये पवित्रता देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करती है, ये पवित्रता हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती है। हमें इसकी सभी मर्यादाओं पर ध्यान देना है। मुझे हंसी की एक बात याद आ रही थी जब ये टॉपिक दिया गया कि शादियां होती हैं ना आजकल, और भोजन बन के लग जाता है एक टेंट में, जहां जैसी सुविधाएं लग गया बहुत सारी चीजें। अब ब्राह्मण भी गए हैं, क्या करती हैं माताएं आप ही बता दो। रसमलाई तो बहुत अच्छी, कोई देख थोड़ा है, इधर उधर देगा कोई नहीं है, यहाँ खा लिया थोड़ा सा। अब पानी पूरी बहुत अच्छी है, ये तो मशीनों से बन के आई है, इसमें क्या हुआ, चलो थोड़ी सी वो भी सही। माताएं खुद मुझे बताती रहती हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं ये तो कुछ मजा तो आया नहीं, यहीं तक तो रहा टेस्ट, नीचे जाके सब बराबर। फिर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे जो स्ट्रिक्टली मर्यादाओं का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं, अरे हमारे यहाँ तो चार बहनें आई थी, उन्होंने तो सब खाया, तुम उनसे अलग हो क्या। अब उन बेचारों के लिए मुश्किल हो जाती है। मर्यादित जीवन, हमारी बोल चाल भी मर्यादित, हमारा व्यवहार भी मर्यादित हो। जितने भी स्ट्रिक्ट मर्यादाएं बनी यज्ञ में, वो सब इसलिए बनी कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें। अब देखो एक छोटी और सिंपल मर्यादा की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं। सभी के हाथ में मोबाइल आ गया है, इसका प्रयोग यदि मर्यादित है तो इसके द्वारा सेवाएं हो सकती हैं, हम टेंशन से फ्री रह सकते हैं, हम अपने कार्यों को सहज बना सकते हैं। लेकिन बहुत लोग रात को 12 एक बजे तक भी बात करते हैं। अभी देखने वालों को तो पता है ना कि एक बजे वो किससे बात कर रहा होगा, जिससे 9 बजे नहीं कर सकता। टू बी वेरी ओपन, तो गड़बड़ होती है, यज्ञ में कमजोरी आती है। हमारे पास एक आया, मैं ये छोटी बात और इम्पोर्टेंट भी है, समर्पित होने आए हैं, ज्ञान सरोवर में भी 10-12 भाई हैं। एक के बारे में मुझे चुपचाप बताया, 2 बजे तक मोबाइल पे लगा रहता है। मैंने उसको क्या समझाया, मैंने ये नहीं कहा तुम मोबाइल छोड़ दो, मैंने उसे कहा तुम्हारी इस धारणा से यज्ञ कमजोर होता है, ये सोच लो। अभी तुम ट्रायल पर हो, ये बात जानने के बाद तुम्हें कोई यहां रहने नहीं देगा, लेकिन अगर कभी रह गए तो तुम यज्ञ को कमजोर करोगे, सोच लो पुण्य होगा या पाप। इसलिए अच्छा है सेवा करके अपने घर जाके आनंद से ज्ञान योग का अभ्यास करो। समझ गए ना, न उसका योग होगा सवेरे, न वो मुरली सुनेगा, व्यर्थ वाइब्रेशंस फैलेंगे, इन सब से यज्ञ कमजोर होता है। मनुष्य का मन कमजोर होगा, उसकी धारणाएं टूटेंगी। बहुत लोगों को नुकसान कर दिया इंटरनेट ने, युवकों को खास, बूढ़ों को भी कर दिया। अगर मुझे कुछ ओपनली बोलने को कहा जाए तो मैं बहुत कुछ बोल दूं, लेकिन बोलने की भी मर्यादाएं होती है ना, बहन जी कहेंगी क्या बोलने लगे। 60 साल का बुजुर्ग, 20 साल से ज्ञान में चलने वाला, इंटरनेट पर फिल्म देखने लगा, पत्नी बहुत स्ट्रोंग ज्ञान में, कहता है तुम चलो मैं तो दूसरी शादी करूंगा। 20 साल ज्ञान में चलकर 60 साल का व्यक्ति, मर्यादाएं तोड़ी ना ये सब। बाबा ने एक लाइन दी है मर्यादाओं की, ये फिल्में, ये इंटरनेट पे गंदगी, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत घातक है। तो मैं सभी को एक चीज पर ध्यान दिला रहा हूं आजकल, बहुत इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म है, कहीं लिखी नहीं गई है, किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अव्यक्त बाबा ने अवश्य बताया हुआ है। मैं उसको इस तरह से कहूंगा, जैसे सेवा शुरू करने से पहले यज्ञ बैगरी पाठ से गुजरा था, सबको पता है ना, भगवान चाहता तो हीरो की बरसात करा देता वहां, लेकिन उसने वो नहीं किया। और उसका एक लक्ष्य था सबकी अग्नि परीक्षा लेकर पक्कों को तैयार कर देना सेवाओं के लिए, क्योंकि तब सेवाएं कठिन चीज थी। जिन बहनों को सेवाओं पर जाना था उन्होंने 14 साल से दुनिया नहीं देखी थी, उन्हें संसार का कुछ पता नहीं था। कईयों को तो नोटों का भी पता न रहा था जो नए निकले थे वो क्या है, बाबा को भी नहीं पता चला था नई करेंसी क्या निकली है। ऐसे ही अब हम बढ़ रहे हैं जय जयकार की ओर, हाहाकार थोड़ा बाद में। तो इस महान यज्ञ को सूक्ष्म परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं, चल रहा है। अब ये सूक्ष्म परीक्षा वैसी नहीं है कि खाने को नहीं मिलेगा, कारे नहीं मिलेंगी, सब होगा। सूक्ष्म अंदर के संस्कार बहुतों के इमर्ज होकर उन्हें पीछे ले जाएंगे, कईयों को दुनिया में ले जाएंगे। इसलिए सभी को ध्यान रखना है, कुछ मर्यादाएं अपने जीवन में, कुछ बाबा की आज्ञाएं अपने जीवन में स्ट्रांगली अपना लें। मुझे कई कुमार जब बताते हैं, कई बहनें बताती हैं, जब से हम ज्ञान में आए हैं हमने अमृत वेला मिस नहीं किया, मुरली नहीं मिस की, तो हमें भी लगता है हम भी कभी कभी कर देते हैं। बहुत बड़ा बल है अमृत वेले, है या नहीं? बाबा विशेष रूप से हम सबको वरदान और शक्तियां देते हैं। बाबा ने ये अपॉइंटमेंट दी है सबको 4 बजे की, 4 से 5 मैं तुम्हारे लिए हूं, 5 से भक्तों के लिए। योग तो 5 बजे भी लगाया जा सकेगा, योग तो बाद में भी लगाया जा सकेगा, इस टाइम भी हम लगाएंगे, लेकिन सवेरे का ये टाइम बाबा अपनी ओर से हम सबको बहुत कुछ देता है। हम अपने को आनंद से भर सकते हैं। तैयार हैं इस आज्ञा का पालन करने के लिए? बहुत तो करते होंगे आप में से। स्ट्रांगली इसको पकड़ लें, इसको महत्व दें। ये नहीं 12 बजे तक काम चल रहा है फिर सोचे 4 बजे उठ के योग भी कर लेंगे, वो नहीं होगा। अपनी दिनचर्या को भी रीमैनेज करें अच्छी तरह। 10:30 तक सो जाना, जल्दी उठकर आनंद लेना, भगवान से बातें करने का मौका मिलता है। देखो मुझे भी 5-6 दिन से कुछ सुंदर अनुभव हो रहे हैं। मेरी तबीयत भी खराब रही थी, मुझे बुखार रहने लगा था, कुछ गड़बड़ हो गई थी पैरों में, उसकी जो दवाई दी हैवी थी, बुखार रहने लगा उसे। मेरी आंख 2 बजे खुले, पहले दिन रात को बुखार में सोया, 2:45 बजे आंख खुली, इतना फ्रेश कि जैसे बाबा बुला रहा है कुछ देने के लिए। मैं कमरे से बाहर, ज्ञान सरोवर में तो बहुत जगह खाली है, घूमने की वहां आ गया, और एक बहुत सुंदर अनुभव तुरंत होने लगा रूम से बाहर निकलते ही कि बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, बेहद की छत्र छाया। मैं उसके नीचे रहा 1.5 घंटा, फिर मुझे थकान होने लगी, 4 बजे मैं आ गया, बुखार फिर होने लगा, सो गया। दूसरे दिन यही थी, आज फिर 2:45 फ्रेश आंख खुली, बुखार नहीं था मुझे, फ्रेश था मैं, फिर बहुत सुंदर अनुभव। और एक बहुत अच्छी बात जो बाबा ने कही है, जो मैं बहुतों को कराता हूं अपने यहां, वो आज मैं बहुत पावरफुल ढंग से की, वो ये था। बाबा ने कभी टीचर्स बहनों को कहा था, जो किसी को बाबा कहे वो हम सबके लिए होता है, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो, संसार को दो। बहुत बड़ी चीज है ये। हमारा एक ग्रुप ज्ञान सरोवर में रोज ये सब अभ्यास कर रहा है, ग्लोब पर खड़े हो गए, सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से भिन्न भिन्न अभ्यास करके उससे दृष्टि ली 1/2 मिनट, फिर जैसे सारे संसार को चारों दिशाओं में दी, हमें दृष्टि से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, बहुत आनंदकारी चीज है। 5 मिनट में चित आनंद से भर जाता है। तो सभी सवेरे के सुंदर समय का पूरा लाभ उठाएं। भाई लोग उठाते हैं, मैं आते ही उठवाऊंगा। सबको उठाना है लाभ, और थोड़ा दिनचर्या को ठीक करना है। बहाने नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्राप्ति का समय है। ये दिन नहीं तो हमें याद आया करेंगे। वो समय आ रहा है जब हमें ये दिन याद आया करेंगे कि हम कहां कहां चले गए। बुद्धि कैसे हमने अपने को उलझा दिया, क्यों नहीं हमने समय के महत्व को समझा। समय बहुत बड़ा खजाना, उसमें भी अमृत वेले का समय सबसे बड़ा खजाना, जो हमें खजानों से भरपूर करता है, प्रभु मिलन के सुख से आनंदित कर देता है। हम बाबा से बात करें, हम उसको थैंक्स दें, थैंक्स का बहुत प्रभाव है। कल मैं कैड में था, नीचे कैड हार्ट की बीमारियों का डॉक्टर गुप्ता इलाज करते हैं ना, योग से धारणाओं से, तो मैं भी एक दिन जाता हूँ। तो लास्ट में कहा गीत बजेगा और थैंक्स का थैंक्स देंगे, तो मैंने उन सबको याद दिलाया कि थैंक्स आपको किस लिए देना है। आप इसे की बात से समझ जाएंगे सब कि बाबा आपने मुझे निरोग कर दिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये नहीं बाबा मेरा ये हार्ट ठीक कर दो, ये नहीं, आपने मुझे निरोग जीवन दिया। तो रोज सवेरे सच्चे मन से बाबा को, दोनों को सूक्ष्म लोक में सच्चे दिल से शुक्रिया दें, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया। दिया या नहीं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं, आपने मुझे बहुत सुख दिया, श्रेष्ठ भाग्य बना दिया, मुझे बहुत धन संपदा दी, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। और इसका इफेक्ट देखना, जिस चीज के लिए आप उसे शुक्रिया करेंगे वही बढ़ने लगेगा। तूने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दी, डिवाइन बुद्धि दी, सुंदर मन दिया, आपको बहुत शुक्रिया, ये सब बढ़ने लगेगा। तो सवेरे जो बाबा की मुख्य आज्ञा है, कभी कभी बाबा ने मुरलियों में कहा ये बाबा की प्रथम आज्ञा है, क्योंकि इससे ही हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इससे ही हम अपनी स्थिति को महान बना सकते हैं। प्योर वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। मात्र ब्रह्मचर्य तक हमें सीमित नहीं रहना है, विचारों की प्योरिटी, विचारों की महानता बहुत जरूरी है। एक लाइन में आपको कहूं, एक है प्योरिटी, दूसरा है प्योरिटी का बल। कोई आत्मा बहुत अच्छी प्योर होने के बाद यदि व्यर्थ में रहती हो, परचिंतन में रहती हो, स्वमान और योग में न रहती हो, तो उसके पास प्योरिटी का बल नहीं रहता। उसकी प्योरिटी एक छोटे से दीपक के समान है जो थोड़े से जगह को प्रकाशित करेगी, लेकिन महान आत्माओं की प्योरिटी का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। उसके लिए व्यर्थ से मुक्त, ये भी हमारी मर्यादाएं हैं। कोई भी एक बात संगठन में हो जाती है, चारों ओर फैलती है, और फैलने के साथ डबल ट्रिपल चार गुनी होकर फैलती है। मिर्च मसाला बहुत मिलाया जाता है, टेस्टी बना दिया जाता है। बाबा ये बात कहते थे, टेस्टी बनाने की सबको अब प्रैक्टिस है ना, तो बातों को भी टेस्टी बना देते हैं। इससे हमारा संगठन, हमारी सेवाएं कमजोर पड़ती हैं। मुझे याद रहता है, यहाँ मुझे बैठने का बहुत मौका मिलता है, यहाँ वालों की क्लासेस भी होती हैं। यही बाबा ने कहा था मधुबन वालों को, ये मधुबन जादू की नगरी बन जाएगा, लेकिन बनेगा तब जब यहाँ से व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये बात हरेक व्यक्ति के लिए है, हरेक व्यक्ति का जीवन महान बन जाए यदि व्यर्थ समाप्त हो जाए। बाबा से हमें वफादारी भी रखने लगे। दूसरी मर्यादा थोड़े में याद दिला दूं, मुरली ये नहीं मुरली टीवी पे पढ़ ली, नीचे आता रहता है ना, हमने तो मुरली नेट से निकाल के सुन ली, पढ़ ली, सुन ली, इससे काम नहीं चलता। मेरे अनुभव, मुझे सबसे ज्यादा सुख इस जीवन में मुरली के समय मिला है, वो भी जब दादी प्रकाशमणि थी तब बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी मुरली ऐसी होती थी जैसे भगवान स्वयं आत्माओं से बात करता था ना, वो ऐसे ही पढ़ती थी। वो समय परमानंद का, तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए सेवा केंद्र पर ही जाना है। वो आनंद घर में नहीं, मुरली पढ़ लेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, 10 मिनट में पूरी हो गई मुरली पढ़ ली, हाजिरी लगा दी, ये लक्ष्य नहीं है। मुरली में ज्ञान के बड़े रहस्य भी हैं। पीछे मुरली में एक रहस्य आया, मैंने बहुतों से पूछा ये सुना, बहुतों ने तो सुना ही नहीं था। बाबा पहले सूक्ष्म सृष्टि रचता है, 15 दिन पहले 10 दिन पहले ही मुरली में आया था, पहले सूक्ष्म रचना होती है। तो गुह्य रहस्य आते हैं मुरलियों में, उसको हम आप ही जल्दी पढ़ के नहीं कैच कर सकेंगे। एक सुंदर माहौल में, एक सुंदर स्थिति में बैठकर मुरली का रस लेने से जीवन में रस भर जाएगा और बहुत सारी निगेटिविटी समाप्त होगी, क्योंकि आवश्यकता इस चीज की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सभी ने, बहुतों ने इस संसार में अपनी बुद्धि को क्या बना दिया, इसको मैं बोला है क्लासेज में, डस्टबिन, गंदगी गंदगी है, और मुरली इसे क्लीन करती है। हम उन चीजों को डिलीट कर देते हैं, रियलाइजेशन होता है मुरली सुन के ये गलत हो रहा है, हम बिना मतलब ही दूसरों का परचिंतन कर रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं हम ईर्ष्या कर रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं हम पीछे हटते जा रहे हैं, रियलाइज होगा। इसलिए मुरली का रस सेवा केंद्र पर जाना, और बहुत रस लेना है तो पहले 15 मिनट योग भी करना, उससे मुरली अमृत बनकर बुद्धि में समा जाएगी और मुरली बन जाएगी हमारा विवेक, विजडम। ये ज्ञान हमारे लिए विजडम है, इसलिए शास्त्रों में तो ऐसे लिख दिया, ज्ञान से बुद्धि बनती है। ज्ञान से विवेक मिलता है, ज्ञान का सूक्ष्म सार विवेक है, विजडम। वो बढ़ता चलेगा, वो विजडम पूरा कल्प हमारे साथ रहेगा। हमें दूसरी दो आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाएं तो बहुत सारी, उनकी लंबी लिस्ट निकाली जा सकती है, पर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, क्रोध और अभिमान का त्याग। कईयों के ये बढ़ते जाते हैं, हमें अपने जीवन को डिवाइन करना है, मर्यादित से भी अच्छा एक शब्द है डिवाइन, दिव्य बनाना है हमें अपने जीवन को, तो इन दो बुराइयों पर विजय पानी ही होगी। जैसे आज सवेरे तो मुझे बहुत अच्छी एक फीलिंग हो रही थी, आजकल मेरे ये अभ्यास चल रहे हैं करीब 5 साल से, मैंने बाबा की मुरली फिर सुनी थी जो बाबा ने एक बार चलाई है, मैंने पढ़ा उसको, 5 विकार जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हारे परम मित्र बनकर तुम्हारी छत्र छाया बन जाएंगे। विष्णु के ऊपर दिखाया ना 5, तो ये 5ों विकार जिनकी छत्र छाया बन गए, यानी जिन्होंने इन 5ों विकारों को विजय कर लिया वो अधीन हो गए ना, छत्र बन गए, सेवक बन गए, तो ये स्थिति बहुत महान होगी। और जिन्होंने ये अभ्यास किया होगा ना, विनाश काल में कईयों को इसी स्वरूप का साक्षात्कार होगा। साकार पार्ट में, बेगरी पार्ट से पहले जब बाबा ने योग अभ्यास करा ना, उस टाइम के योग अभ्यास दूसरे थे, मैं विष्णु हूं, केवल ये अभ्यास, ये योग था, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, विष्णु भी नहीं मैं चतुर्भुज हूं। तो बहुत बहने जब सेवाओं पर गई तो उनसे विष्णु के साक्षात्कार हुए, क्योंकि जिस स्वरूप का हम लंबे काल से अभ्यास करते हैं, संकल्प करते ही वह स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। आगे ये खेल बहुत चलना है जय जयकार के समय, तो अपने क्रोध और अभिमान पर विशेष ध्यान देना है। मैंपन कहीं भी आता है, देखिए मैंपन ही टकराव में लाता है, मैंपन ही किसी व्यक्ति को संगठन से दूर करता है। मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने इतनी सेवा की, मुझे पूछा नहीं गया, पीछे हटा देता है ना। मैं एक बड़े सेंटर पे गया, एक भाई ने 2 बीघे जमीन दी सेंटर को, बहनों ने एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर बना लिया। भाई ज्ञान में भी थोड़ा थोड़ा आता, कोई बड़ी दादी यहाँ से गई, सबका परिचय कराया, उसको मिलाया तो सही लेकिन उसका परिचय कराना बहने भूल गई, वो रूठ गया। अभी सेंटर पे भी ना आए, रूसा हुआ एकदम, तूने मेरा परिचय क्यों नहीं कराया। मैं गया तो बहनों ने मुझे बता दिया ये परिस्थिति है भाई, तो मैंने कहा तुम अच्छी तरह परिचय कराना उसका मेरे सामने। बहनों ने उसकी खूब महिमा करके उसको चढ़ा दिया, तब वो खुश हुआ। अब मैंने भी उसकी महिमा कर दी, तुम तो बहुत अच्छे हो, कितना बड़ा काम तुमने करा दिया, फूल गया और ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, पर एक कमजोरी अंदर जो पनप रही है, सूक्ष्म चीज है ना ये मैपन, अति सूक्ष्म, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको समझने के लिए भी बहुत बड़े स्वमान की जरूरत है, लंबे काल का स्वमान। स्वमान से हमें अपनी महानताओं का ज्ञान हो जाता है, तो कमजोरियों का आभास आराम से होने लगता है। कहां मैंपन काम कर रहा है ये पता चल जाता है। मैंने ये काम किया, मुझे ये करना चाहिए, ये मेरा ही है, मेरे सिवाय कोई नहीं करेगा। एक केस हुआ था गुजरात में बहुत साल पहले, 30 साल पहले, दादी प्रकाश मणि गई कहीं सेंटर पे, एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम था। एक भाई इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हुआ और करने लगा कि स्टेज सेक्रेटरी मैं बनूंगा। बहनों ने बहुत समझाया कि इसको ये योग्य है, अच्छा बोलता है, इसको बनने दो, नहीं माना और उसने पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया। दादी की भी नहीं सुनी, आखिर दादी को भी निराश वहां से आना पड़ा। कितनी बड़ी चीज हो गई, रहा नहीं वो व्यक्ति ज्ञान में। अभिमान मनुष्य को तोड़ता है, इसकी तुलना सूखे पेड़ से की जा सकती है, जो तूफान लगते हैं टूट के गिर जाता है, और फ्लेक्सिबल टहनियों वाला पेड़ जब तूफान चलेगा तो डांस करेगा। हमें बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत सरल चित्त होना है। अहम लंबा समय लेता है, मैंने भी इस पर बहुत बहुत गहराई से पुरुषार्थ किया जीवन में। जब पहली बार ये सुना कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में इसलिए गए क्योंकि वो मैं को जीतने में नंबर 1 रहे, यहां से मुझे श्रेष्ठ प्रेरणाएं प्राप्त हुई। चेकिंग होने लगी, कहां कहां मैं अपन काम करता है, करता है अति सूक्ष्म रूप से। उसकी पकड़ होने लगी, बाबा की बहुत सुंदर बात मिली, फिर जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब ईश्वरीय देन है। बस ये फाइनल बात थी मेरे लिए। तुम्हें सफलता मिली जीवन में बहुत, तुम्हारा नाम हुआ जीवन में बहुत, तुमने बहुत बड़े काम किए, तुमने बहुतों को सुख दिया, तुमने 50 सेंटर खोले, तुमने बहुत पब्लिक प्रोग्राम किए, ये सब प्रभु देन, प्रभु के आशीर्वाद से ही किसी को सफलता मिलती है, किसी का नाम होता है, कोई आगे बढ़ता है। ये बात तो भक्ति की थी, पर हमने इसको प्रैक्टिकल यहां भी देख लिया कि जब तक बाबा की दया दृष्टि न हो, जब तक उसकी दुआएं न हो, किसी का जीवन भी निर्विघ्न बनता नहीं है। तो हम इस महान शत्रु को पकड़ लें और अपने को डिवाइन बनाने के लिए इसका त्याग करें। एक सूक्ष्म बात सुना के आगे बढ़ेंगे। जिसके पास मैंपन होगा। ये मैंपन एक दीवार बनती है हमारे ऊपर, बाबा हमें यूज नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो योग्य आत्माओं को अपने मान कार्य में यूज करेगा। क्रोध का त्याग। बाबा का बनने के बाद आप में से कौन कौन बहुत क्रोध से मुक्त हो गए हैं? हाथ उठाओ उमंग से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनका आधा छूट गया है वो हाथ उठाओ। अच्छा, तीसरा भी हाथ उठवा दो। जिनको जरा आता है वो हाथ उठा दो। डरने की बात नहीं, क्रोध आता है ना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि एकदम छूट जाएगा क्रोध और हम क्रोध मुक्त हो जाएंगे। क्रोध आता है, इससे हमें छूटना है, क्योंकि ये भी हमारी शक्तियों को नष्ट करता है, हमारी डिविनिटी को, हमारी दिव्यता को, और फाइनली मर्यादाओं का भी उल्लंघन करा देता है। हम कुछ भी बोल जाते हैं, फिर मुख पर कंट्रोल नहीं रहेगा जब क्रोध आएगा। क्रोध का सबसे प्रैक्टिकल नुकसान यही होता है कि मुख से ऐसे बोल भी बोल दिए जाते हैं जो दूसरे व्यक्ति के दिल को घायल कर देते हैं, और वो घाव कभी नहीं भरता। इसलिए क्रोध का शमन करना है, इस अग्नि को बुझाना है। कैसे? दो प्रैक्टिस मैं आपके सामने रखता हूं बस। एक तो प्रैक्टिकल में ध्यान देना है कि हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रहें। माताओं के घर में बच्चे हैं, अब बच्चे वैसा तो नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अपने चित्त को शांत करना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बच्चे अपने ढंग के हैं, उनकी इच्छाएं अपनी हैं, कहीं कहीं तो आप उनकी इच्छाएं पूरी करने में मर जाएंगे, ये भी सब हो रहा है। सुनेंगे नहीं वो आपकी, उनका फील्ड अपना है। कल ही एक माँ लेके आई, वुमेन्स का प्रोग्राम चल रहा ना हमारे यहाँ बहनों का, तो एक अपने लड़के को लेके, इंजीनियरिंग में पढ़ता है बेंगलोर में, बहुत अच्छा है इधर का ही, लेकिन बुरे संग में आ गया है, क्या करूं। ज्ञान में भी था बचपन से, अब बुरा संग तो ऐसा है ना, वो युवा काल आते आते बढ़ने लगता है। माताओं को चिंता हो जाती है, हमारा इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा पढ़ने वाला, सबको चिंता होगी ना, लेकिन चिंता करने से काम नहीं चलेगा, क्रोध करने से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल एक टेंडेंसी और बढ़ती जा रही है संसार में, सबको सावधान रहना है, बच्चे जल्दी सुसाइड करने की सोचते हैं। इसलिए प्यार सबसे बड़ा हथियार है। क्रोध और केवल आज्ञा देना, इससे काम नहीं चलता। अपना क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, बच्चे बिगड़ेंगे। इसलिए अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाना ये बहुत आवश्यक है, योग के, अच्छी आत्मिक दृष्टि के। मैं छोटी सी चीज बहनों को सिखाया करता हूं, दो बार अपने घर में बैठकर, कभी भी ये संकल्प करो हमारे घर के सभी लोग आत्माएं देव कुल की महान आत्माएं हैं। बस सब कर सकते हैं भाई बहने, हमारे घर के पांच लोग हैं, ये पांचों आत्माएं देव कुल की महान आत्माएं हैं, मैं भी महान आत्मा हूं। देखो वाइब्रेशंस कितने सुंदर लगेंगे आपको ही तुरंत, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर बहुत गहरा पड़ेगा। क्रोध को जीतने के लिए दूसरी और बहुत प्रैक्टिकल विधि, 21 दिन करेंगे बस, सवेरे आंख खुलते ही ये संकल्प करने हैं, मैं विजयी रतन हूं। विजय की शक्ति जग जाएंगी। मैं क्रोध मुक्त हूं, अब वो शक्तियां क्रोध की ओर काम करेंगी। मेरा चित्त शांत है। मैं विजय रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत है। क्या होगा इससे ये भी आप जान लें। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, ये तीनों चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। जैसे आपका क्रोध उभरेगा वो आपको रोकेगा, डॉ चित्त शांत है, तुम क्रोध मुक्त हो, तुम तो विजय रतन हो। ठंडा होने लगेगा, रोज कर लें। और सवेरे की बात मैं सबको सुनाता ही हूं, सवेरे उठने पर पहला विचार, फिर 3 मिनट के संकल्प हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अंतर मन जगा है, वो सब उसमें चला जाएगा और वैसा ही होगा। आपका भाग्य आपको साथ न देता हो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, भाग्य जगने लगेगा। आपकी मेमोरी वीक हो रही हो, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, 3-3, 5-5 बार ये सब संकल्प 5 बार अवश्य करेंगे, विद गुड फीलिंग, फीलिंग के साथ। जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको धन की कमी पड़ रही है, ये नहीं बाबा पैसा बहुत कम हो रहा कुछ करो ना, बाबा कहेगा मेरे पास थोड़ा फैक्ट्री है ऊपर नोट होगी, वो नीचे ही है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बाबा मुझे आपने सब खजाने दिए, आपको बारंबार शुक्रिया। देखो क्या होता है, मार्ग खुल जाएगा। सवेरे के इस समय का सदुपयोग करेंगे सभी। वफादार शब्द बहुत बड़ा है, मैं कुछ कहूं आपको डर लगेगा कि ये क्या बता दिया, डरेंगे तो नहीं। प्रैक्टिकल में बता देता हूं, शादी हुई है, पति पत्नी है, पत्नी को वफादार कब कहा जाता है, मैंने बताएं, आपका ही प्रश्न और इसी में उत्तर है। केवल एक, संपूर्ण प्यार एक में, बुद्धि कहीं गई, वफादारी नहीं। आजकल ये समस्या नई पीढ़ी में तो बहुत बढ़ती जा रही, कितना बुरा हाल है, सुनने की शक्ति से भी परे। कल एक बहन फोन कर रही, मैं ट्रेन के आगे आ गई हूं मरने के लिए। मैंने कहा क्यों मरना चाहती हो, 6 साल शादी को हो गई, 2 साल ज्ञान में लिए हो गई, मेरा पहले किससे प्यार था, फिर वो मेरी जिंदगी में आ गया, बाकी तो मैं समझ ही गया, अब मेरे लिए दुविधा हो गई, एक परिवार, उसकी भी शादी हो चुकी है जो जिंदगी में आ गया, अब मैं बीच में, 2 परिवार टूट रहे हैं, इधर बाबा छूट रहा है, मैं सोचा मर ही जाऊं। मैंने कहा नहीं मरो नहीं, वापिस चलो पटरी से, ऊपर उठो, बाहर आ गई फट से, चाहती थी ना तो कोई कहे मुझे कि मरो नहीं। मैंने कहा नहीं तुम्हें मरना नहीं, कल की बात है, मैं नीचे गया था स्टूडियो के लिए जा ही रहा था तो फोन आ गया, मैंने कहा चलो सुन लेता हूं। फिर मैंने उसको समझाया, घर भेजा, ये सब खेल बिगड़ गया है कलयुग के अंत में, किसी का दोस्त नहीं है, समय का प्रवाह है, चक्र चलकर वहीं पहुंच गया है ना जहां से चला था, तो विकृति प्रकोप में है, समाप्त हो जाएंगी, अति के बाद अंत हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को चक्की में पीस कर जाएगा। ये समय पिसने का चल रहा है, लोग बाबा कहते हैं सरसों के दानों की तरह पिस जाओगे, वो काल आ गया है। तो एक से वफादारी माना, भगवान को एक बार कहा वो मेरा है, बस जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, अब उसके अलावा और किसी को प्यार नहीं करेंगे। ये नहीं आपके बच्चे हैं आप उनको प्यार नहीं करेंगे, वो अलग पहलू है। एक से सच्चा प्यार, ये है उसके प्रति वफादारी। हम इन सब चीजों में आगे बढ़ेंगे, बोल की मर्यादाओं पर भी बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि बोल ऐसी चीजें हैं, बोल सबको बोलना है, सारा समय बोलना है, एक के बोल ऐसे हैं दूसरों का कष्ट हर लेते हैं, तो एक के बोल ऐसे हैं कि उसे सोने नहीं देते सारी रात, एक के बोल किसी की बीमारी को हर सकते हैं और दूसरे के बोल अच्छे व्यक्ति को भी बेड पे लेटा सकते हैं। हमारे बोल कैसे हो? मीठे तो बहुत सुन सुन के थक गए सभी कि मीठे होते ही नहीं और मीठे मीठे लिखा है, कुछ और बताओ। सुखदाई बोल हो, वरदानी बोल हो, सबसे अच्छा शब्द है वरदानी बोल, दूसरों के लिए सुखदाई बोल, तो घर घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आज ये बहुत सारे झगड़े अहम और क्रोध के कारण ही हैं। आज ही एक फोन सवेरे, मेरे बेटे की शादी हुई है, पत्नी है तो अच्छी, बड़ी गुणवान, पर सारा दिन बक 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 करती रहती है, मेरा लड़का दुखी हो गया उससे, शादी को 2 ही मास हुए हैं, क्या करें, उसको घर भेजा है थोड़े दिन के लिए कि थोड़ा शांत होके आओ। अच्छी है, वो भी सोचती है मैं इतना ज्यादा न बोलूं, पर बहुत ही बोलती है। देखिए कहा उसमें बहुत गुण है, देवी है, वो खुद बता रही उसकी सास, बहुत ही अच्छी, हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसी हमारे घर में लड़की आई है, लेकिन उसके बोलने से सभी तंग हो गए हैं, रुकती ही नहीं है। आजकल नॉन स्टॉप ट्रेन चली है ना, सीधी पूना से दिल्ली पहुंचती है, मुंबई से दिल्ली। तो हमें वाचा पर बहुत कंट्रोल करना है। एक समय था जब बाबा अपने यज्ञ में बहुत अच्छी लहर चलाई थी, जो काम 50 शब्दों में करना है वो 5 में करो तो बोल की सिद्धि मिल जाएगी, वाचा सिद्धि, वाक सिद्धि कहते हैं इसे, बहुत बड़ी चीज। जो हम बोलें वो दूसरों के लिए वरदान बन जाए, और अमर्यादित बोल हो, दूसरों को परेशान करने वाले बोल हो, तो बोलने वाले को भी कष्ट तो होगा ना। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो रिटर्न होकर हमारे पास आता है, इसलिए हम सुख देंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। बहुत अच्छा जीवन हमें बनाना है, बाबा के शब्दों में, तुम्हें देखकर सब ये कहें ये भगवान के बच्चे हैं। बच्चों में माँ बाप का दिखता है ना, सूरत भी दिखती है, तो व्यवहार से भी कई लोग पहचानते हैं ये फलाने का बच्चा है। हमें देखकर भी लोग कहें लगता है ये तो भगवान के बच्चे हैं, लगता तो ऐसा ही है। इससे जय जयकार होगी, और इसमें बोल और व्यवहार ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी अपने चिड़चिड़ेपन को भी ठीक करें, मन को शांत करेंगे। मैंने आपको एक ही लाइन में बोला, बुद्धिमान वही है जो अपनी चित्त को शांत रख सके, क्योंकि वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, अब तो वो होगा, मैं ड्रामा नहीं कहता, जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। प्रभु इच्छा से ही तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है भारत का, और आगे भी प्रभु इच्छा से उससे के द्वारा बहुत काम होंगे, क्योंकि भारत को एक पावरफुल नेता की जरूरत थी। आने वाले समय में कमजोर नेता होते तो भारत अधीन हो जाता किसी के भी, चाहे विनाश का काम करना हो उसके लिए पावरफुल नेता चाहिए, स्थापना के लिए बहुत पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो ये भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, किससे बनेगा? लोग भारत माताओं की जय बोलते हैं और हम क्या बोलेंगे, पिताओं की जय, भारत की माताओं की जय। भूमि तो मिट्टी है ना, धरती है, उससे भी हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन भारत की माताएं जब महान बन जाएंगी तो भारत महान। माताएं तो पहला गुरु होती है ना बच्चों की, आप संस्कार दें अपने बच्चों को बहुत सुंदर, और आप चाहें तो उन्हें कलयुग के प्रभाव से थोड़ा तो बचा सकती हैं, उनका बिल्कुल दोष नहीं है। मैं तो देखता हूं ना, दोष है ही नहीं। मेरे पास वो खुद आते हैं युवक अपनी बात लेकर कि हम विवश हो रहे हैं और मैं जानता हूं उनकी विवशता क्यों है, इसलिए आप यदि उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर के माहौल अपने वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर रखें, तो वो कलयुग के प्रभाव से थोड़ा मुक्त रहेंगे। अपने मोमबत्ती जलाई, हवा तेज चल रही तो ऐसे कर लेते हैं ना, थोड़ा बस ऐसे कर दो, बच्चों के लिए छत्र छाया बना दो अपने घरों में पवित्र वाइब्रेशंस की, तो सभी बहनें भोजन पवित्र बनाएं। कैसे, कितना याद रहता है भोजन बनाते, इसलिए कुछ और कर लो। पहले तो बाबा का आह्वान करो, आ जाओ, बाबा से बातें करनी सीखो। बाबा मैं अकेली हूं, काम बहुत है, आपके पास तो हजार बुझाएं हैं, जरा हजार बुझाओ सहित आ जाओ, जे जल्दी काम हो जाएगा मेरा, बातें करो, देखो मजा आ जाए। अपनी दृष्टि डाल दो हमारे भोजन पर, आ जाओ नीचे, बातें करो मीठी मीठी, ऊपर रह के बोर हो गए होगे बहुत समय से रहे हो, अब बच्चों के पास आके आपको भी आनंद आएगा, नीचे आ जाओ। माँ बाप अकेले बैठे हो, बच्चों के बिना मजा आता है, बाबा से बात करो और मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये याद करते हुए भोजन बनाओ, तो भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे, खाने वालों पर इसका बहुत बहुत अच्छा असर हो जाएगा। तो हमारा जीवन बहुत महान है। मैं दो चीजें आपको कहता हूं जो मैं अपने को कहता आया हूं जीवन में, ये जीवन बहुत मूल्यवान है और एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण, जैसा मैंने कहा, मैं अपने को कहता था जब मैं यहां था मधुबन में, बहुत सुंदर चीजें देखी बाबा की, मैं सोचा करता था ये दिन याद आया करेंगे, यही दिन शास्त्रों में लिखे गए हैं, जब आगे के जय जयकार के दिन आएंगे ना, और तब कोई 18 पुराण पढ़े तो उसे पता चलेगा यही सब लिखा हुआ जो यहां होगा, 18 पुराण बन जाएंगे हमारे चरित्रों के, जो संगम युग पर खेल चलेगा उसके, तो दो लाइनें होंगी बाबा के सामने, बहुत पहले की मुरली है, 45 साल पहले की होगी, एक प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन, दूसरी पश्चाताप करने वालों की लाइन, क्योंकि जितने ब्राह्मण अब हैं उतने ही छोड़ के चले गए हैं, बराबर हैं उतने ही, अगर 10 लाख अब हैं तो 10 लाख छोड़कर भी गए हैं, कोई 6 मास चल के, कोई 1 साल चल के, कोई ज्यादा चल के, वो सब एक साथ आएंगे पश्चाताप के साथ। हम सभी कौन सी लाइन में खड़े होंगे, सब कुछ बाबा से ले लेना है। मुझे बाबा के ये शब्द बहुत अच्छे लगे, मुरली में अभी अभी आया है 1 मास के अंदर, बच्चे मेरे से जो चाहे लो, देखो भगवान सामने बैठकर कहता है, मेरे से जो चाहे लो, चिंतन करना इस पे, यहां क्या क्या लिया जा सकता है उससे, और केवल अब लिया जा सकता है, अब छूट गया दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ भाग्य लिया जा सकता है। मैं आपको एक सुंदर चिंतन देना चाहता हूं, जब आप यहां हैं, योग में बैठ के भी कर सकते हैं, सवेरे उठ के भी कर सकते हैं, मेरा हर जन्म ऐसा होगा, ऐसा कैसा सोच लेना, कैसा ऐसा कैसा, मेरा हर जन्म ऐसा हो, चलो गा छोड़ देता हूं, मेरा हर जन्म ऐसा हो, शुरू से अंत तक 84 जन्म, कैसा, हर जन्म में सिर पर ताज हो। अब आगे सोच लेना, एक सुंदर जीवन के लिए क्या क्या हो, हर जन्म में बुद्धि श्रेष्ठ हो, हर जन्म में धन धान्य से हम भरपूर हों, हर जन्म में हमारा भाग्य का सितारा चमकता रहे, हर जन्म में हमको सुंदर सुखी प्यार भरा परिवार हो, हर जन्म में सफलता हमारे आगे पीछे घूमे, जहां भी हम जाएं विजय को साथ लेकर आएं। चिंतन करना, मेरा हर जन्म ऐसा हो, ये सब कॉन्शियस माइंड में भरने लगेगा। कुछ बार करना होता है और उसी अनुसार वो हमारे पुरुषार्थ को प्रेरित करेगा। ये बहुत सुंदर चिंतन है। तो यहां जब आप भट्टी में आए हैं, एक और बात आपको कह दूं, अपने जीवन के कम से कम 5 स्ट्रॉन्ग नियम बना कर जाओ, जो आपके जीवन को मजबूत बनाए, निर्भय बनाए, निश्चिंत बनाए। बहुत जरूरी है निर्भय होना, निश्चिंत होना आज के समय में, क्योंकि खेल बिगड़ रहा है। निश्चिंत जीवन हो जाए, भय खत्म हो जाए। भय बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। जब हम विनाश के दौर में प्रवेश करेंगे, अभी तो किसी को पता भी नहीं विनाश क्या होता है, वह सुनते हैं विनाश होगा, विनाश के डर से हम सब भी कहने लगे नहीं परिवर्तन होगा। लोग समझते हैं ठीक है, एक कपड़ा उतार के दूसरा पहन लेंगे, एक मकान छोड़ के दूसरा ले लेंगे। बहुत भयानक प्रक्रिया है विनाश की, भयानक। बहुत लोग तो देखते ही डर के मर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को कुछ 5 नियमों में बांध दो, खुद को बनाने हैं। जैसे मैंने मधुबन में आकर, मैं 68 में आ गया था, बाबा की सब बातें देखी, मुरलियों से बहुत कुछ मिलने लगा, 10 नियम बना दिए जीवन के। सोचा इस 10 नियमों में अपने को बांध लेता हूं, ताकि कोई भी संकल्प न चले, पीछे मुड़कर देखने कोई न रहे कुछ। एक कहानी पढ़कर आए थे, एक राजा ने नदी पार करके दूसरे राजा पर अटैक किया। सेना ने जब नाव से नदी पार कर ली, तो उस राजा ने सारी नाव तुड़वा डाली। लोग हैरान थे, नाव क्यों टूट रही हैं? उसने कहा अब या तो जीतना है या मरना है, वापस नहीं जाना है। क्या हुआ होगा? जीत, बल डबल हो गया तुरंत सुनते ही कि मरना तो है ही, तो क्यों ना 10-20 को मार के मरे, वापिस तो नहीं जा सकते अब। तो मैंने पहला यही काम किया था, पीछे मुड़ने के सारे मार्ग बंद किए। मैं सुनाऊंगा नहीं क्या किया मैंने, नियम बना दिया, पवित्रता के मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। नियम पक्का। अमृत वेले के लिए नियम बना दिया, अमृत वेला मिस ही नहीं करेंगे। तो मैंने चाय बनाने की पहली चाय की ड्यूटी ले ली। 3:30 बजे चाय देनी होती थी, 3 बजे उठना ही है, तो बहुत अच्छा रहा। मुरली मिस होती नहीं थी हमारी, मुझे मुरली में बहुत रस था। कितना भी काम हो मैं सब पूरा करके, तब 6:30 पहले 6:15 ही मुरली पूरी होती थी, फिर 6:30 पे आई मैं पहुंचता था। नियम बनाए, और भी मेरे तो स्ट्रांग नियम थे, सेवाओं में कभी ना नहीं कहेंगे, उससे तो बहुत सुंदर अनुभव रहे जीवन में। कुछ भी मांगेंगे नहीं, ये और एक बहुत सुंदर सिद्धांत रहा। बात पैसा या वस्तु मांगने की नहीं होती। मैंने अपने जीवन में कभी कोई अवसर भी नहीं मांगा, मुझे क्लास कराने को दे दो, मुझे ये अवसर मिले, नेवर। अब तक भी मैं कभी नहीं कहता मुझे कोई क्लास दे दो, और इतनी मिलती है कि मैं ना करता हूं, भाई अभी छोड़ दो मुझे। नियमों में बांधना है सभी को अपने को, समझ गए ना? नियमों में, नियम आप अपने अनुसार बनाए, क्रोध के बारे में बना लें, वाचा के बारे में बना लें, जो भी चीज आपको बाधा लगती हो जीवन में, जिसे आप छोड़ना चाहते हो, उसके लिए एक नियम भी बना दे, भाई हम जोर से नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे नियम, हम अच्छी बात अच्छे शब्दों में ही कहेंगे, हम किसी को डांटेंगे नहीं, ये छोटे छोटे नियम भी बहुत प्रभावकारी होते हैं, हम किसी का बिना मतलब का चिंतन नहीं करेंगे, गलती वो करे चिंतन करके परेशान हम हो, जानकी दादी कहा करती थी, जब बाबा व्यक्त हुए वो भी यहीं रहती थी, तो उनकी ये बात हमें बहुत प्रेरक रही, गलती दूसरे की मुसीबत हमारी, पर चिंतन करके खुशी हम खो लेते हैं, गलती वो कर रहे हैं, हमें बहुत काम आई ये बात। ऐसे 10-5 नियम, 5 बना सकते हैं अपने 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 ढंग के, जो आप उचित समझें, हम कभी परेशान नहीं होंगे, बाबा बैठा है ना, हम अपने मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित करेंगे, हम बेफिक्र बात सा रहेंगे, हम किसी बात का टेंशन नहीं लेंगे, कईयों को जल्दी टेंस हो जाने की आदत होती है ना, छोटी सी बात हुई टेंशन में आ गए, ये छोटे छोटे नियम हमें रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स रखेंगे, थोड़े दिन ध्यान देंगे, भाई हमें किसी बात में जल्दी से टेंशन में नहीं आ जाना है। मैंने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस उन दिनों की थी, मुझे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, नो इमीडिएट रिएक्शन, बहुत काम आई ये बात, तुरंत रिएक्शन करता है ना मनुष्य, कुछ बात हो गई तुरंत गर्म हो जाएगा, तुरंत उल्टा सुल्टा बोलने लगेंगे, तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगी, नो इमीडिएट रिएक्शन, धैर्य। ऐसे नियम जीवन को दिव्य बनाते हैं, पसंद है बना लेंगे, यही करके जाना, सोचेंगे कल बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, आज ही कर देना काम, चाहे अभी कर लेना, विचार में ले आओ अपने, 5 नियम बनाने में 5 ही मिनट लगेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, तो आप सभी इस तरह आगे बढ़े जीवन में, अभी योग करेंगे और फिर आप जाएंगे कुछ रसपान करने, 12 से 1 हम कुछ कुछ सुना के आपको अच्छे अनुभवों की ओर ले चलेंगे, उसको आप बहुत एंजॉय करेंगे, चले ओम शांति। सोचा नहीं था भगवान मिलेंगे, बहुत अच्छा गीत है नशे का।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।